हरे कृष्णा। हम लोग हरिदेव जी के दर्शन के बाद जो रास्ते में निकले, दाईं ओर जो कुंड था उसका नाम था दान निवर्तन कुंड। उसके बारे में श्री राधानाथ स्वामी महाराज एक सुंदर कहानी बताते हैं कि रूप गोस्वामी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ललित माधव। ये किताब में राधा और कृष्ण के बहुत विरह लीला का वर्णन था, और जब दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ये पुस्तक को पढ़ने लगे, उनके आंखों से आंसू आने लगे और वो इतने दुखी थे विरह लीला सुनकर कि वो कई दिनों तक प्रसाद नहीं ले रहे थे और विश्राम भी नहीं कर रहे थे और 24 घंटे वो रो रहे थे विरह के प्रेम के कारण। जब ये समाचार श्री रूप गोस्वामी को मिला तो रूप गोस्वामी ने और एक किताब लिखी जिसका नाम हुआ दान केली कौमुदी। और दान केली कौमुदी में भगवान कृष्ण कैसे राधा रानी से जो टैक्स लेते हैं उसका वर्णन किया गया है। और जब ये पुस्तक रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंपी और कहा कि आप ये पुस्तक अब पढ़िए और जो पहली वाली पुस्तक है ललित माधव उसमें थोड़ा सुधार बाकी है, आप मुझे वापस दे दीजिए। और दास गोस्वामी ने पुस्तक वापस दे दी। और जब ये नई पुस्तक पढ़ने लगे तो उसमें राधा कृष्ण के दिव्य मिलन लीला का वर्णन था, और ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए और फिर से प्रसाद लेने लगे। इस तरह से ये लीला जो जिसका वर्णन कल हम बरसाना में भी परसों कर रहे थे, सांकरी खोर, जैसे जहां पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ एकत्रित हो जाते और जबरदस्ती भगवान कृष्ण गोपियों से दान लेते, दूध, दही, मक्खन और ये सब पदार्थों का, तो ऐसी लीला जो है इस गोवर्धन इलाके में भी होती है। और जहां पर ये लीला होती है उसको दान घाटी कहा जाता है। जैसे कि मैंने सवेरे बताया था, गोवर्धन जो है एक मोर के आकार का है और उसमें राधा कुंड और श्याम कुंड दो आंखें हैं, और दान घाटी जो है वो उस मोर की गर्दन है। अब हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं इसको गोविंद कुंड कहते हैं। पुराणों में बताया गया है कि देवताओं और ऋषियों द्वारा भी ये स्थान बहुत वंदनीय है, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध बनाने वाला ये स्थान है। यहां पर आते ही व्यक्ति को कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये गोविंद कुंड की महिमा है। जब जैसे हिथोली ने धनुर्धर स्वामी महाराज हमको कहानी बता रहे थे कि कैसे आज के दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद कराकर सारी पूजा जो है गिरिराज गोवर्धन को अर्पण कर दी, और स्वयं भगवान गिरिराज के एक विशाल रूप धारण करके सारे अर्पण किए हुए जो भोग था, पूरी और समोसा और हलवा, और जो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्णा बुक में, वो सब चीजें अर्पण किए और भगवान कृष्ण ने एक विशाल रूप धारण करके सब कुछ खा लिया। और सब कुछ खाने के बाद में वो पुकारने लगे, अनियोर अनियोर, उन्हें प्रसाद लिया ही नहीं है तो इसलिए जोर से बोली अनियोर 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 अनियोर। जब वो इस तरह से अनियोर अनियोर पुकारने लगे तब सारे ब्रजवासी, उनके पास कुछ बचा नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था, और फिर उन्होंने एक तुलसी का पत्ते अर्पण करके भगवान को संतुष्ट किया। तो यह स्थान अनियोर, जो कि थोड़े समय पहले हम गांव से गुजरे। बाद में इंद्र क्रोधित होकर खूब बरसात करने लगे, जैसे कि धनुर्धर स्वामी महाराज बता रहे थे, लाइक पिलर्स, खंभों के समान। सारे ब्रजवासी जब विपत्ति में थे तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो इस तरह पुकारने लगे। एक भक्त का यह अर्थ है कि विपत्ति जब भी आए तब कृष्ण को पुकारना। हम सब इस भौतिक संसार में हैं, हम हर समय विपत्ति में हैं, इसलिए हमें हर क्षण पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब ब्रजवासी कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण ने अपनी नन्ही सी उंगली से गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण कर दिया। एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि भगवान क्या कोई पर्वत बना सकते हैं जो वो स्वयं नहीं उठा सके, और शिला प्रभुपाद जी बोले हाँ, वैसा पर्वत बना सकते हैं जो नहीं उठा सकते और फिर उठा भी लेंगे। तो भगवान कृष्ण के लिए बहुत सरल है गिरिराज को धारण करना, और 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान कृष्ण इस पर्वत को धारण कर रखे और सारे ब्रजवासियों को बोले आइए आइए, आप घबराइए मत, ऐसा मत सोचिए कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर जाएगा, आप सब आइए। और सारे ब्रजवासी अपने गायों को साथ में लेकर 7 दिन 7 रात्रि तक साथ में रहे। श्री राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हालांकि इंद्र ने अपराध किया था, इंद्र की गलती थी अभिमान के कारण, लेकिन उसकी एक सेवा हो गई न जानते हुए, और वो ये थी कि उन्होंने सारे ब्रजवासियों को एक साथ मिलने का एक अवसर दिया। 7 दिन 7 रात्रि तक सारे ब्रजवासी अपलक नेत्रों से भगवान श्याम सुंदर के मुख कमलों का दर्शन कर रहे थे, और सारे ब्रजवासी साथ साथ ये सोचते हुए कि शायद कृष्ण के हाथों से पर्वत गिर जाए, इसलिए वो अपनी लकड़ी भी लगा रहे थे। लेकिन श्याम सुंदर जी ने उनको दिखाने के लिए एक क्षण जब अपनी अंगुली को ऐसे थोड़ा सा हिलाया तो सारा पर्वत डगमगाने लगा और सब समझ गए कि ये कृष्ण की शक्ति है। अफकोर्स ब्रजवासी यहां बताते हैं कि ये कृष्ण की शक्ति नहीं बल्कि राधा रानी की पलकों की शक्ति है, कि राधा रानी अपने पलकों से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। और चारों ओर से जब पानी गिर रहा था, भगवान ने ऐसे इंतजाम किया था कि सुदर्शन चक्र के गर्मी से सारा पानी जो है तुरंत वो भाप बन जाता था, और अगस्त्य मुनि जो भी पानी गिर रहा था वो उसको पीते भी जा रहे थे। तो इस तरह से भगवान ने जब 7 दिन तक पर्वत को धारण करके रखा, उस समय इंद्र को समझ में आ गया मेरी दाल यहां नहीं गलेगी, ये बहुत मुश्किल जगह है, अब मैं समझ गया कि मुझे कृष्ण की शरण में आना चाहिए। तो इंद्र यहां पर आए और भगवान कृष्ण से माफी मांगने लगे, लेकिन 7 साल के बालक कृष्ण इस विशाल राजा इंद्र की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हुए आगे निकल पड़े। और जैसे धनुधर महाराज बता रहे थे कि इंद्र ब्रह्मा जी से पूछने गए और अंत में वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, और बृहस्पति ने उनको बताया कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर जाओ जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। और इसीलिए उन्होंने सुरभि गाय से निवेदन किया, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण ब्राह्मणों से और गायों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इंद्र हालांकि एक विशाल राजा हैं, स्वर्ग के अधिराज हैं, लेकिन वो क्षमा मांगने के लिए एक सुरभि गाय की मदद मांगते हैं। और जब इंद्र सुरभि गाय को साथ ले गए तब भगवान कृष्ण उन पर प्रसन्न हुए। हम सब भी अपराधी हैं, इस संसार में जो भी आया है सब अपराधी हैं, सिर्फ नित्य सिद्ध व्यक्ति को छोड़कर बाकी हम सब बदमाश हैं, क्योंकि इस संसार में आना ये एक बड़ा अपराध है। अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे अपराधों को माफ कर दें, तो हमें भी एक सच्चे वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद। जब हम श्री गुरु का आश्रय लेते हैं तो गुरु के आश्रय से हमारे अपराध नष्ट हो सकते हैं। तो इंद्र सुरभि गाय के साथ यहां पर आए और अग्नि ने धूप अर्पण किया, चंद्रमा भी आए, चंद्रमा भगवान को सुंदर मिरर्स आईने अर्पण करने लगे, वरुण ने एक स्वर्गीय छत्र अर्पण किया और सुरभि गाय ने अपने दूध से यहां पर भगवान का अभिषेक किया, इसलिए इस कुंड का नाम हो गया गोविंद कुंड। इस तरह से घोषणा किया गया कि कृष्ण सारे गायों के स्वामी हैं। भगवान साथ साथ ब्रह्मा जी आए, वो इस पूजा के इस आरती के मुख्य पुरोहित थे, और शंकर जी भोलेनाथ जी यहां पर आशीर्वाद देने आए, और फिर सुरभि गाय ने अभिषेक का कार्यक्रम शुरू किया। ब्रह्मा जी ने आरती की और भगवान के सिर के ऊपर एक मुकुट प्रदान किया और घोषित किया कि स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, लेकिन सब इंद्रों के राजा हैं भगवान कृष्ण, जिनका नाम गोविंद है। इस तरह से देवता अनेक छत्र से, कोई धूप से, कोई चंवर से भगवान की पूजा यहीं पर गोविंद कुंड पर कर रहे थे, और कुछ समय बाद वे अपने अपने धाम में वापस लौट गए। तो कृष्ण यहां पर एक बहुत ही सुंदर सिंहासन के ऊपर बैठे थे, और पूजा होने के बाद कृष्ण के सखा उनके मित्र अपनी गायों को खोजते खोजते यहां पर आए और देखे कृष्ण यहां पर बैठे हैं और पास में आरती का प्लेट पड़ा है, चंवर पड़े हैं। तो सारे ग्वाल बालों ने क्या किया कि उन्होंने आरती का सामान उठाकर स्वयं पूजा आरंभ की, किसी सखा ने छत्र अर्पण किया, किसी ने चंवर करना शुरू किया, और जब वो इतने सरल रूप से पूजा कर रहे थे, आकाश में स्थित देवता जब ये पूजा को देख रहे थे तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वो समझ गए कि हमने जो भक्ति की वो कुछ नहीं है, ब्रज की भक्ति जो ब्रजवासियों की भक्ति है वो सबसे ऊंची है। इसलिए जैसे धनुर्धर महाराज बता रहे थे, ये ब्रज जो स्थान है ये देवलोक से भी परे, वैकुंठ से भी परे है, क्योंकि यहाँ की जो भक्ति है वो ऐश्वर्य से विहीन है, ये शुद्ध भक्ति है, ये ब्रज भक्ति है, जिसमें कृष्ण के सखा ये कभी नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान है, उनको अपना निज जन, अपना प्रिय जन मानते हैं। तब नंद महाराज यहाँ पर आए और सखाओं से पूछने लगे, ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और श्रीदामा जो कि कृष्ण के प्रिय सखा हैं, वो कहने लगे कि हम सब गाय को खोज रहे थे और देखा यहाँ पर कृष्ण की पूजा हो रही थी। मधुमंगल कहने लगा, मैंने एक ऐसी चीज देखी जो कभी सोची नहीं थी, मैंने देखा एक गाय आई और वो गाय बात कर रही थी भगवान श्याम सुंदर से, और फिर मैंने देखा एक व्यक्ति जिसके शरीर में हजारों हजारों आंखें हैं और वो कृष्ण को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, फिर मैंने एक चार सिर वाले व्यक्ति को देखा ब्रह्मा जी को, और फिर मैंने एक पांच सिर वाले व्यक्ति को देखा शंकर जी को, और फिर मैंने एक विशाल विशाल हाथी को देखा ऐरावत को, जो कि स्वर्गीय गंगा से कृष्ण का अभिषेक करा रहे थे, और फिर हमने गाय को देखा, वो दिव्य गाय भगवान श्याम सुंदर को अनंत मात्रा में दुग्ध से स्नान करा रही थी। और उस समय एक आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी जो है वो देवता बोल रहे थे, वो बोल रहे थे नंद महाराज को, हे नंद, जिस तरह से हमने पूरे ब्रह्मांड के राजा के रूप में कृष्ण को गोविंद के रूप में घोषित किया है, आप भी कृष्ण को ब्रजराज के रूप में घोषित करिए। उसके बाद यहाँ पर सारे ब्रजवासियों ने नंद महाराज के साथ कृष्ण का अभिषेक किया, यशोदा माई स्वयं आई और उन्होंने आरती अर्पण की, और ये सारा जल जो अभिषेक के द्वारा है वो यहाँ पर गोविंद कुंड में है। एक और कथा जो चैतन्य चरितामृत में बताई गई है कि माधवेंद्र पुरी यहाँ पर आए थे, परिक्रमा करने के दौरान वो यहाँ पर बैठे थे और उन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, एक छोटे से बालक आए, उसका नाम था गोपाल, उनको पता नहीं था, वो कहने लगे कि आप ये दूध ग्रहण करो, यहाँ पर इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता, या तो कोई मांग कर खाता है और जो नहीं मांगता उसके लिए मैं स्वयं लेकर आता हूँ। तो माधवेंद्र पुरी ने जो स्थान हमने आपको दिखाया था वहां पर बाद में गोपाल जी के विग्रह की स्थापना की। अभी थोड़ी दूर आगे हम जो जाएंगे, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं वो स्थान का, क्योंकि वहां जगह और समय नहीं होगा, वो दो कुंड आपको दिखाई पड़ेंगे, आपकी बाईं तरफ जो कुंड होगा वो नवल कुंड है और दाईं तरफ अप्सरा कुंड। भगवान कृष्ण की लीला वृंदावन में होती है शरद ऋतु में, लेकिन वसंत ऋतु में जो लीला होती है वो गोवर्धन के पास चंद्र सरोवर में होती है, और जो भी जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखे हैं वो उसके संबंध में है। और नवल कुंड अप्सरा कुंड की परिभाषा यहां लिखी है, महाराज बताते हैं, इन नवल कुंड कृष्णा मेल्ट्स इनटू द कुंड, द एक्सटेसी ऑफ हिज लव फिल्स नवल कुंड। तो नवल कुंड क्या है, कृष्ण ही कुंड के रूप में आ गए, जल के रूप में, और अप्सरा कुंड क्या है, वो गोपियों का प्रेम है जो कि जल के रूप में आया है। द लव इन संस्कृत इज कॉल्ड रस, एंड रस स्पेल्ड बैकवर्ड इज सर और सरोवर, रस हैज बिकम सर इन द यूनिटी ऑफ द लव ऑफ द डिवाइन कपल एंड देयर एसोसिएट्स। तो जो प्रेम है जिसको रस बोलते हैं वही उल्टे तरीके से सर या सरोवर कहा जाता है, तो यहाँ पर राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो सरोवर के रूप में प्रकट हुए हैं, जिसको अप्सरा कुंड और नवल कुंड बोलते हैं। और अंत में हम लोग पूछरी के लोटा के स्थान पर जाएंगे, वहां पर कृष्ण के सखा जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा गए तो उन्होंने बताया कि मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा, और कृष्ण के एक मित्र लोटा बाबा उनको कृष्ण ने बताया कि मैं लौट कर आऊंगा, और वो यहीं पर 5000 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण लौट कर आएंगे, कृष्ण लौट कर आएंगे, और अब तक इंतजार कर रहे हैं। उनको सिखाते हैं कि हमें कृष्ण के लिए शाश्वत काल तक भी अगर इंतजार करना पड़े हमें इंतजार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जैसे मुकुंद दत्त मुकुंद दत्त को बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको 10,00,000 जन्म बाद मेरे दर्शन होंगे, और मुकुंद दत्त बड़ी प्रसन्नता के साथ नाचने लगे कि कम से कम 10,00,000 साल बाद से ही मुझे कृपा मिलेगी। पेशेंस, सब्रता, जो कि हम मुकुंद दत्त और पूछरी के लोटा बाबा से सीख सकते हैं। श्री गोविंद कुंड की जय। अभी एक भक्त यहां से हम सबके ऊपर जल, गोविंद कुंड का जल फेंकेंगे, वही हमारा 3 बूंद स्नान हो जाएगा और फिर हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। सबने ले लिया 3 बूंद पानी? एवरीवन
डिवोटी बॉटल आप जा सकते?
ये दो।
दिनेश प्रभु जी कहाँ पर हैं? या आप पानी लेकर आए जल्दी से।